नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की कथा जिन्होंने सुनी है उनके हृदय में इतना अच्छा लगा कि ऐसी 3 वर्षों से ये अपने चल रही है महाभारत की कथा, उसमें कल की कथा बहुत अच्छी थी। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं। क्या बड़े प्रेम से दुर्योधन और युधिष्ठिर मिले हैं, कर्ण और युधिष्ठिर मिले हैं, सब योद्धा मिले आपस में बड़े प्रेम से। कई बहनें अपने भाइयों से मिले हैं, कई पत्नियां पति से मिली हैं, कुल मिलाकर के सारा कौरव समुदाय पिछली सब गंदगी को छोड़ छाड़ बहुत प्रेम से मिले। अर्जुन और कर्ण मिले, देखो भीमसेन और दुर्योधन मिले, 100 भाई सब मिले भीमसेन से। कितना स्नेह था, कितना प्रेम था। और ये भी बता दिया कि दुर्योधन कौन था, दुर्योधन कलयुग था और ये शकुनी था, ये द्वापर युग था। ये सब पूर्व निर्धारित पात्र थे। बहुत बड़ा आदर्श यहां रखने के लिए आए थे और अपना अपना काम करके चले गए। ये सब कथा सुनने के बाद जन्मेजय आगे बोलते हैं वैशंपायन जी से। अब देखो जन्मेजय के मन में क्या बढ़िया भाव आ रहे हैं। जन्मेजय ने कहा, हे वैशंपायन जी, ये कथा सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य, बड़ी प्रसन्नता और बड़े आनंद का अनुभव हुआ है। यदि वरदाता भगवान व्यास जी मेरे पिता परीक्षित का भी उसी रूप वेश और अवस्था में दर्शन करा दे तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और उस अवस्था में मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ बना रहूंगा। आज महर्षि की कृपा से मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए, मुझे मेरे पिता परीक्षित का दर्शन होना चाहिए उसी रूप वेश अवस्था में। राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि वेदव्यास जी ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला दिया। जन्मेजय ने देखा मेरे पिता परीक्षित उसी रूप वेश अवस्था में आकाश से ही उतर रहे हैं। उनके साथ महात्मा शमीक, जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला था, उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि, वो भी आए। राजा परीक्षित के जो मंत्री वो भी वहां दिखाई दिए। तदनंतर राजा जन्मेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञांत स्नान के पहले अपने पिताजी को अपने हाथों से नहलवाया, फिर स्वयं ने स्नान किया। स्नान के पश्चात यायावर कुल में उत्पन्न जरत्कारु नंदन आस्तिक से कहा, विप्रवर, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा ये यज्ञ भांति भांति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है, क्योंकि आज मेरे शोक का नाश करने वाले पिताजी यहां उपस्थित हैं। आस्तिक ने कहा, वाह राजन, इसमें कहना ही क्या है, जिसके यज्ञ में तपस्या की निधि पुराण पुरुष महर्षि वेदव्यास विद्यमान हो, उसकी दोनों लोकों में विजय ही विजय होती है। तुमने ये विचित्र उपाख्यान सुना, तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए हैं। तुम्हारी सत्य परायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की, महात्मा व्यास जी के प्रभाव का दर्शन किया और पापनाशक कथा को सुनकर महान धर्म को प्राप्त किया है। उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठें खुल गई हैं, तुम्हारा संदेह दूर हो गया है। अब जो धर्म के पक्ष का समर्थन करने वाले हैं, जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्माओं को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहते हैं, सौती, सौती का अर्थ है सूत वंश में होने वाले पुत्र, या और कोई ऋषि का भी नाम होगा। विप्रवर आस्तिक की यह बात सुनकर राजा महर्षि ने, राजा जनमेजय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया। तत्पश्चात मुनिवर वैशंपायन से पूछा, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्रों पौत्रों और संबंधियों से मिलने के बाद फिर क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार देखकर शोक से रहित हो पुनः अपने आश्रम पर चले गए। धृतराष्ट्र आश्रम पर चले गए। अन्य सब लोग तथा महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने अपने अभीष्ट स्थानों पर चले गए। महर्षि लोग सब बातें कर रहे थे कि देखो कौरवों के पांडवों के विषय में कैसा कैसा युद्ध का वातावरण और कितनी कटुता और कपटता से भरे हुए दिन थे, और आज व्यास जी ने कितना सुंदर दृश्य दिखाया है। महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ में लेकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए। आश्रम पर पहुंचकर लोक पूजित महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, महाबाहु, तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुंह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी है, और आज तुमने अपने पुत्रों को पांडु पुत्रों के साथ मेल करते भी देख लिया है। अब तुम्हारे मन में कोई शोक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समझदार मनुष्य अपने भाग्य के विधान से जो होता है उसमें दुख नहीं मानते। परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने संपूर्ण भाइयों सुहृदों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा करो, ये जाकर अपने राज्य का काम संभाल ले। इन लोगों को अभी आपकी सेवा में वन में रहते हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। धृतराष्ट्र, इस बात को तुम खूब अच्छी तरह से समझो कि अपने शरीर के नाश से पहले अपने अंदर का हर्ष शोक राग द्वेष सब प्रकार का विकार मन से निकाल दो, क्योंकि इनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपने हृदय को अत्यंत पवित्र और हल्का करते हुए भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना है। व्यास जी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा, हे अजात शत्रु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो, तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया, अब तुम राजधानी को लौट जाओ, विलंब मत करो, तुम्हारी दोनों माताएं मेरी तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं, अब ये अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकती, मैं भी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता, अब ये अधिक भगवान व्यास के तपोबल और तुम्हारे समागम से मुझे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रों के दर्शन हो गए, जिनका मैंने कभी दर्शन नहीं किया था, उन सब को मैंने आज देखा है, अतः मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया। अब मैं कठोर तपस्या करके अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा, इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो। आज से पितरों के पिंड का, सुयश का और कुल का भार तुम्हारे ऊपर है, इसलिए बेटा या तो आज या कल बस तुम अवश्य चले जाओ, अधिक देर मत करो। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब तुम राजधानी जाओ। राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मुझे यहां से विदा मत कीजिए, मेरा परित्याग करने से मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं निरपराध हूं, मेरे सभी भाई और सेवक यहां से भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करना चाहता हूं, मुझे यहीं रहने के लिए आज्ञा दीजिए एवं शेष भाइयों को हस्तिनापुर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैं जो कहती हूं उसे सुनो, तुम जितना कर रहे हो, जितना किया है वो बहुत है, तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है, इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे वही करो, क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है। सच पूछा जाए, यदि तुम यहां रहोगे तो तुम्हारे पिता का मन संकोच में रहेगा कि देखो युधिष्ठिर अपना घर छोड़कर यहां बैठा है, इसलिए इनका तपस्या से ध्यान चूक जाएगा, हमारी बात मानो युधिष्ठिर, तुम हस्तिनापुर जाकर प्रजा की सेवा करो। गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पहुंचकर रोती हुई माँ कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्वनी गांधारी माता ने मुझे घर लौट जाने की आज्ञा दी है, किंतु मेरा मन आपको छोड़ने का नहीं है, जाने का नाम सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, फिर मैं जा भी कैसे सकूंगा, मैं आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तपस्या से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर मुझे भी इस तपस्या में क्यों नहीं शामिल कर लेती हो। माँ, अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में लगता ही नहीं है, मेरे बार बार हर तरह से तपस्या करने की ही इच्छा हो रही है, ये सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी सूनी है, अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, हम सब लोगों को अपनी कृपामयी दृष्टि से अनुग्रहित करें, हम सब लोगों को अपनी कल्याणमयी दृष्टि से अनुग्रहित करने की कृपा करें। यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कहा, महाराज युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझ में तो माताजी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है, आप यहां से लौट जाइए, मैं इनके साथ तपस्या करूंगा। आप राजा हैं, जब आपके पुत्र यहां शासन करने योग्य हो जाएं तब आप तपस्या करना, मैं तो आप में सबसे छोटा हूं, मुझ पर राज्य का भार भी नहीं है, तो मेरा काम तो माँ की सेवा करना, तपस्या करना और इस शरीर को सुखादान देना, इससे कोई प्रजा की सेवा में अंतर भी आने वाला नहीं है, इसलिए मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगाया और कहा, बेटा ऐसा मत कहो, मेरी बात मानो और घर को लौट जाओ, तुम लोगों के रहने से हमारी तपस्या में विघ्न पड़ेगा, तुम्हारी ममता में बंध कर मैं उत्तम लोक को जाती हुई नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि संसार की कामना ममता राग आसक्ति ये मनुष्य को बहुत नीचे गिरा देती है, तपस्या से इन सभी का नाश करके ये प्राणी बहुत ऊंची स्थिति में जा सकता है, इसलिए बेटा यहां से चले जाओ, हम लोगों को जो हमारी थोड़ी सी आयु रही है उसको तपस्या में लगाने दो, ममता के कीचड़ में मत घसीटो। इस प्रकार कुंती ने तरह तरह की बातें कहकर उनके मन को धीरज बंधाया। फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। महाराज के ऐसा कहने पर राजर्षि धृतराष्ट्र ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने नकुल सहदेव अर्जुन नकुल सहदेव सबको छाती से लगाकर आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद सब गांधारी के चरणों में पड़े, उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने कुंती को प्रणाम किया। माता कुंती ने सबको हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। तदनंतर उन्होंने सबकी परिक्रमा की। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने ससुर को न्याय पूर्वक प्रणाम किया। ये शब्द पर ध्यान देना चाहिए, न्याय पूर्वक प्रणाम। न्याय पूर्वक प्रणाम क्या होता है? जमीन पर माथा टेक के प्रणाम करना, ऐसे प्रणाम। फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी और उनके अपने कर्तव्यों का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गईं। थोड़ी देर में सारथियों ने रथ जोतो, इधर लाओ, उधर ले चलो, ऐसी ऐसी पुकार मचाई। इसके बाद अपने घर की स्त्रियों भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए। जनमेजय कहते हैं, वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए, अब 2 वर्ष बीत गए थे। एक दिन देवर्षि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और ऊंचे आसन पर उनको बैठाया, थोड़ी देर विश्राम किया। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान इधर बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, सब प्रकार कुशल मंगल है ना? इस समय आप किन किन स्थानों में घूमकर आए हैं? बतलाइए आपकी मैं क्या सेवा करूं, आप ही हम लोगों की परम गति हैं। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा कहना बहुत सत्य है, इधर बहुत दिनों से तुमसे मिलना नहीं हुआ, इस समय मैं तपोवन से आ रहा हूँ, रास्ते में भगवती गंगा तथा उनके अगल बगल के सभी तीर्थों का दर्शन करता हुआ आया हूँ। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं, क्या आपने उनको देखा है, वे कुशल पूर्वक है ना? गांधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे हैं, इनके विषय में आपको जो जानकारी उसको मैं सुनना चाहता हूं, यदि आपने उनको देखा है तो बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, मैं सारा वृत्तांत ठीक ठीक बतला रहा हूं, तुम स्थिर चित्त होकर सुनो और उन बातों पर ध्यान दो। जब तुम लोग वन से लौट आए तो तुम्हारे पिताजी गांधारी और तुम्हारी माँ कुंती के साथ गंगा द्वार अर्थात हरद्वार को चले गए। संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर उनके साथ हरिद्वार की ओर चले गए। वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या प्रारंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते थे और एकदम मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे वे सब लोग धृतराष्ट्र का बहुत विशेष सम्मान करने लग गए। उनके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया। उस अवस्था में उन्होंने 6 महीने व्यतीत किए। गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती 1 महीने तक उपवास करके 1 दिन भोजन करती और संजय 6ठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके 3रे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्नि में विधिवत हवन करते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते कभी अदृश्य हो जाते। अब उनका कोई नियत स्थान तो रहा नहीं, न उनका कहीं जाने आने का संकल्प होता था। चल दिए सामने चले गए, दाएं बाएं चले गए, कहीं चले गए। कुंती और गांधारी ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थीं। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। ऊंची नीची भूमि आने पर संजय धृतराष्ट्र को कभी पकड़ लेते थे और कुंती देवी गांधारी की आंख बनी हुई रहती थी, नेत्र पर पट्टी थी तो वही चलती। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से वे आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर से हवा चली जिससे उस वन में भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाय धाय करके जलने लगा, मृगों के झुंड झुलसने लगे और बनेले सुअर भाग भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भाग नहीं सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अतः वे भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट देख राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय भग जाओ, तुम किसी ऐसे स्थान पर भग जाओ जहां ये दावाग्नि तुम्हें जला न सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम करके परम गति को प्राप्त करेंगे। इस बात को सुनकर के संजय घबरा उठे और बोले, महाराज इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका शरीर विधिवत दाह संस्कार के योग्य है और आवनी अग्नि में आपका दाह संस्कार होना चाहिए। किंतु इस समय इस दावा नल से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी दिखता नहीं है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थाश्रम का परित्याग करके चले आए, अतः हमारे लिए इसी तरह की मृत्यु का विधान है, यह मृत्यु हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है, इसलिए तुम अब यहां से शीघ्र चले जाओ, विलंब मत करो और हमको हमारे विधि के अनुसार छोड़कर चले जाओ। यह कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। उन्हें उस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज अब अपने को योग युक्त कीजिए, बस अब आपका समय आ गया है। राजा ने उनके कथनानुसार समाधि ले ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ के भांति निश्चेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गांधारी, तुम्हारी माता कुंती और तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र, ये तीनों उस दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए, किंतु संजय के प्राण बच गए। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर ये सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार तुम्हारे पितृव्य महामना धृतराष्ट्र, तुम्हारी बड़ी माँ गांधारी और तुम्हारी जन्म देने वाली माँ कुंती, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। वन में घूमते घूमते अकस्मात इन तीनों के मृत शरीर पर मेरी दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृत्तांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने भी उनके लिए शोक नहीं किया, क्योंकि उनके मन में उन तीनों की सदगति के विषय में तत्पर। तनिक भी संदेह नहीं था। युधिष्ठिर, वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना, उनके मृत शरीर को मैंने देखा, और जब वहां किसी ने भी शोक नहीं किया है तो मैंने देखा कि कभी न कभी तुम्हें ये समाचार सुनने को मिलेंगे, तो तुम कहीं शोक न करो, इसलिए मैं सब तरह का प्रवास छोड़कर तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हें यही कहने के लिए आया हूँ, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने स्वेच्छा से अग्नि में अपने शरीर की यज्ञ के भांति आहुति दी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का ये वृत्तांत सुनकर नारद जी के द्वारा बार बार कहे हुए शोक न करने की बात सुनकर भी महात्मा पांडवों को शोक तो हो ही गया, और उनके अंतःपुर में महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में जब रोने की आवाज कुछ शांत हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आंसू पहुंचकर नारद जी से इस प्रकार निवेदन किया, ब्रह्मन, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की, बड़ी माँ गांधारी की और हमारी माँ कुंती की वन में यूं अनाथ के भांति आग में जीते जी जलकर मृत्यु हुई है, ये कितने दुख की बात है। मुझे यशस्विनी गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पतिव्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई है। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक के समुद्र में डूबा जा रहा हूं, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया। आए उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आह्वनी आदि अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? कष्ट होता है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस पर विचार मत करो, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले भी राजर्षि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे, उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आहवनी आदि अग्नियों को वहीं पर त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को चले गए थे। तपस्वियों का कहना है, उसी अग्नि के बढ़ जाने पर उस वन में वो आग लगी है, और जैसा कि मैंने पहले बताया है, वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। माने ब्राह्मणों ने जो आवनी अग्नि तैयार की थी, धृतराष्ट्र ने कहा मैं इसका भी त्याग करता हूँ। अब वो अपने आग को बुझाना नहीं होता है, वो ले जा करके जंगल में ले गए, जंगल में आग पकड़ ली, वही आग है। इसलिए यज्ञ की अग्नि है। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है, और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम अपने भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप सब आ गए। फिर सब ने जल में स्नान किया और युयुत्सु को आगे करके उन्होंने धर्मात्मा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती देवी को उनके पृथक पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। उसके बाद अशौच निवृत्ति के अनुकूल कार्य करते हुए पांडव लोग नगर के बाहर ही ठहर गए। युधिष्ठिर ने जहाँ राजा युधिष्ठिर दग्ध हुए थे उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हरिद्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पित की। शौच संपादन के लिए दशाह आदि कर्म कर लेने के पश्चात पांडुनंदन युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किया तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र के निमित्त उन्होंने सोना चांदी गऊ तथा बहुमूल्य शैयाएं प्रदान की। इसी प्रकार गांधारी और कुंती के पृथक पृथक नाम लेकर उनके लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जिस वस्तु की जितनी मात्रा में कोई इच्छा करता उसको वस्तु उतनी मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, सवारी, भोजन, मणि, रत्न, धन, आवाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हरिद्वार में भेजे गए थे उन्होंने राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और उन तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने ये सारे समाचार राजा युधिष्ठिर को कह सुनाया। देवर्षि नारद जी, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा युधिष्ठिर ने अपने जाति, भाई, संबंधी, मित्र, बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर में व्यतीत किए थे और 3 वर्ष तपस्या में करते हुए बिताए थे।
मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। मैं मंगन जन द्वार तुम्हारे, मैं मंगन जन द्वार तुम्हारे, राखो हरि शरणाई मंगन को, राखो हरि शरणाई मंगन को, दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। मैं भिकियारी भया बापुरा, तुम दातार सदाई, मैं भिकियारी भया बापुरा तुम दातार सदाही। दीजे दानु अभय पद दाता, दीजे दान अभय पद दाता, उड़त रहे हन काई मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। आठ पहरे ओ लगे हरि आगे कीनो चित लगाए, आठ पहरे ओ लगे हरि आगे कीनो चित लगाए। रिझेगा जब अमर गुसाई, रिझेगा जब अमर गुसाई, देगा पटा लिखाई मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। खाता कबहू न खूटे रोजी, दिन दिन अधिकी थाय, खाता कबून खूटे रोजी, दिन दिन अधिकी थाय, ओ दाता दिन दिन अधिकी थाय। जन हरि राम भक्ति बगसी जे, जन हरि राम भक्ति बगसी जे, मुगति न मांगू काई दाता, मुगति न मांगू काई मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। मैं मंगन जन द्वार तुम्हारे, मैं मंगन जन द्वार तुम्हारे, राखो हरि शरणाई हो, राखो हरि शरणाई, मंगन को दान देवो राम राय, मंगन को दान देवो राम राय। श्री हरि रामदास जी महाराज की जय। और गई।